और खुद को बड़ी चीज ना समझना शुरू कर दें। जो ही इंसान अपने आप को बड़ी चीज समझना शुरू करता है ना, दूसरे हकीर कीड़े नजर आने लगते हैं। दिल में तभी ये ख्याल आता है ना, ये क्या चीज है, छोटे लोग, ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं। माल आते ही काम ही लोग हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए माल को फितना कहा गया ना, फितना। फितना मतलब वो वाला फितना नहीं जो उर्दू में हम कहते हैं, फितना मतलब है आजमाइश। क्योंकि उसको देख ही ना अल्लाह ताला देख रहा होता है कि अब क्या करता है, गरूर करता है, तकबुर करता है। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो जिसके साथ माल चिपक जाए, अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा दिया जिसको वो चाहता है, कम दे देता है जिसको वो चाहता है। ना अल्लाह का देना किसी से राजी होने की निशानी है, ना उसका लेना किसी से नाराजगी की निशानी है। इसने समझ लिया कि बस अल्लाह तो मुझसे राजी, मेरी तो आखिरत भी समर गई और यहां पे भी मैं अल्लाह का बड़ा चहीता हूं और मैं तो बड़ी चीज बन गया। अब वो इतनी अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा है और बाकी सारे छोटे छोटे बस। हर वक्त इसीलिए दूसरों की बुराइयां बयान करता रहता है, जी लोग तो ऐसे, लोग तो ऐसे, वो तो, क्योंकि हकीर जो समझता है लोगों को। हालांकि यही तो हमारा इम्तिहान होता है। देखिए याद रखें, इसमें नहीं इम्तिहान है कि आप अपने उसे ऊपर वालों के साथ कैसे हैं, जो आपसे स्टेटस में, माल में, किसी चीज में भी ज्यादा है, उससे तो सारे ही इज्जत के साथ बात करते हैं, सारे ही उसके साथ झुक झुक के बात करते हैं, सारे ही उनको सलामे करते हैं। उनके साथ आपका क्या इम्तिहान है? अपने साथ वालों के साथ भी नहीं होता इतना, क्योंकि वो जाहिर आपके साथ वाले होते हैं, उनके साथ भी आप इज्जत से ही बात करते हैं, नहीं बोल नहीं तो वो भी एक सुना देंगे। असल हमारा इम्तिहान ही तब होता है जबकि हमारे पास कोई चीज है जो अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई और किसी और के पास उतनी नहीं है, तभी तो हमारा इम्तिहान होता है। अब हम करते क्या है उसके साथ। बाज दफात पे तो ये भी देखा गया कि वालदैन भी अपनी औलाद में से उसके साथ ज्यादा अच्छा सलूक करना शुरू होता है जिसके पास माल है, और उसको बिल्कुल ही छोड़ ही देते हैं या उसको बिल्कुल ही उसके ऊपर बातें बनाने से नहीं हटते जिन जिसके पास नहीं है। हालांकि इसका कोई ताल्लुक अक्लमंदी से और बेवकूफी से भी नहीं है। कहते ये तो है ही बेवकूफ, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसा कि इसको देखो इसके पास नहीं है। फलां देखो वो कितना अक्लमंद, वो कितना जबरदस्त, वो कितना ही देखो कहां से कहां पहुंच गया, जीनियस है वो तो। हालांकि ना उसके जीनियस का कोई ताल्लुक है इससे, क्योंकि यहां पे क्या पता चला, कुल कह दीजिए इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा। यहां पे ये नहीं कहा गया अकल जिसको चाहती है, अकल की बुनियाद है जो जिससे रिस्क बढ़ जाता है, फैल जाता है, और बेअकली की वजह से रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पे तो है अल्लाह चाहता है, तुम्हारा रब जिसका चाहता है कम करता है, जिसका चाहता है ज्यादा करता है। क्या हमारा ये ईमान है? नहीं, जिसके पास माल है वो तो बेवकूफ भी हो तो हम कहते हैं बड़ा अकलमंद, और जिसने चाहे इतनी डिग्रियां भी ली हुई है वो बेचारा दर दर ठोकरें खाता फिरता है नौकरी की खातिर, उसको हम सोचते हैं कि ये तो है ही बेवकूफ, इसके तो अकल ही कोई नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं, उसको अल्लाह ने तंगी दी है अल्लाह की मर्जी, नपा तुला दिया है किसी को उस अल्लाह ताला की मर्जी, उसमें इसकी हिकमत है, बस ये याद रखें। और रिस्क सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रिस्क में सिर्फ माल ही है, रिस्क में सारी जो भी नेमतें जिनसे हम फायदा उठाते हैं सब रिस्क है। औलाद भी इसमें आती है, सलाहियत भी इसमें आती है, सेहत भी इसमें आती है, मोहब्बतें जो आपको, इज्जतें जो आपको मिली हुई वो भी इसमें आती हैं। तो जिसकी चाहता है कम कर देता है, जिसकी चाहता है बढ़ा देता है। तो याद रखिए, वो मिल गया है ना कुछ यहाँ पे इस दुनिया में, आखिरत में जो मिलेगा ना जिसको, वो हाँ अल्लाह की रजा की निशानी है। जो जन्नत जिसको मिलेगी, अल्लाह उसे राजी है तो उसको जन्नत मिलेगी। जहन्नुम में जो जाएगा, अल्लाह उसे नाराज ही है तो वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन दुनिया में ये रूल नहीं है। इसको अपनी माइंड को, माइंड सेटिंग या अपनी जो जहन के अंदर एक बैठा हुआ एक आपका सोच एक जो है उसको चेंज करें। दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा मजे में रह रहा है उसके पास कोई मसले नहीं, हम बस अल्लाह ताला इसे खुशी है, और ये उसके पितरे मसले पता नहीं क्या इसने किया होगा, हाँ कुछ किया ही होगा, जरूर ऐसे करती थी, मतलब यानी ये कोई अल्लाह की फिटकार ही है इसके पास, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये खुद ही जजमेंट देने ना बैठ जाए करें, हमें नहीं पता है, जिसका चाहे बढ़ा दे, जिसका चाहे कम कर दे। लेकिन अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं, वाकई नहीं है ना। लेकिन आज हम भी ये अपना अकीदा सही करें। तो अक्सर लोग इस बारे में गलत फहमी का शिकार रहते हैं। वो तो है ही गलत फहमी में, जिनके पास बहुत कुछ आ जाता है वो तो गलत फहमी खुश फहमी का शिकार हो ही जाते हैं कि अल्लाह हमसे राजी है। वो दूसरे देखने वाले भी ऐसे ही हो जाते हैं। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम, ना माल और ना तुम्हारी औलादें वो चीज है तो करीबुकुम यानी तुमको करीब कर दे, इंदना हमारे पास, हमारे से तुम्हें करीब कर दे, जुल्फा दर्जे में मर्तबे में हमारे से करीब कर दे। ये ऐसी चीजें नहीं है। एक ये काफिर सोचते थे ना कि माल और औलाद और ये चीजें हैं बस, हम तो अल्लाह के बड़े करीब हैं। याद रखिए एक बात, ये नहीं समझिएगा कि काफिर अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता था, शिर्क करते थे। मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह ताला को जानते थे, वो समझते थे कि हमें इतनी बड़ी चीजें हैं, अगर अल्लाह ताला ने रिसालत किसी को देनी होती तो हमें देता ना, हमारे पास इतना माल औलाद है। तो देखिए अब ये सारी मुतरफीन की बात हो रही है, खुशहाल लोगों की बात सारे इस सबक के अंदर। तो माल और औलाद को यहाँ पे ये गलत फहमी को दूर कर दिया गया कि माल और औलाद अल्लाह के करीब करने वाली चीजें नहीं है, कि सिर्फ माल और औलाद है तो बस आप अल्लाह के बड़े प्यारे बन गए। इल्ला ये कि वो अल्लाह के रास्ते में लगाए जाएं तो तब सदका जारिया बनते। तो जुल्फा मतलब क्या, मर्तबे में दर्जे में यानी करीब करते। आगे इसी की बात आ रही, इल्ला मन आमन आमिल सालेहन, सिवाय इसके जो ईमान लाए और साले अमल करे, फउलाइक लहुम जज़ाउ दुअफ, तो उनके लिए है जजा दुगनी। किस वजह से, बीमा आमिलू बवजह उनके अमल करने के, वहुम फिल गुरुफात आमिनून, और वो गुरफों में होंगे बाला खानों में होंगे अमन के साथ। क्या बताया गया कि फकत सिर्फ ओनली माल और औलाद की कसरत को इंसान ये ना समझे कि वो ये चीजें हैं, मैं अल्लाह से बड़ी करीब हूं जी, वो इसीलिए तो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ ये सारा कुछ। वरना फिरौन और कारून तो अल्लाह के बड़े करीब ही होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसे इंसान ये समझ सकता है कि माल और औलाद, और औलाद वलीद बिन मुगीरा के तो इतने बेटे थे, वो तो उन पे बड़ा फखर करता था। सूरह कलम में देखें अल्लाह ताला ने उसकी कितनी मजम्मत फरमाई। और ये भी नहीं है कि जिसके पास माल और औलाद नहीं है पता नहीं उस वो तो अल्लाह का कोई प्यारा ही नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखें, फाके होते थे घर में, माल तो नहीं था उनके पास और औलाद से वो महरूम थी, तो फिर उनका क्या मकाम और मर्तबा है सबको पता है। तो फिर हम कैसे इस चीज को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने तो फरमाया अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और बेटे तो ये दुनिया की ज़ीनत, दुनिया की जिंदगी की बस जीनत है, रौनक है। इसके जरिए हाँ कोई अपने लिए दर्जे भी कमा सकता है, इसीलिए कहा गया इल्ला, वो ये करीब नहीं करेंगे सिवाय उसके जो ईमान लाए और साले अमल करे, यानी अपने माल को भी अल्लाह के रास्ते में लगाए, दाएं बाएं खर्च करे। जैसे आप सल्लम ने फरमाया ना, जो दुनिया में ज्यादा मालो दौलत पाले कयामत के दिन वो ज्यादा खसारे में होंगे सिवाय उनके। देखिए ना, ज्यादा माल है ना ज्यादा खसारे में होंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ने माल दिया, उन्होंने दाएं बाएं आगे पीछे खर्च किया वो भले कामों में, अल्लाह के रास्ते में वो बस हर तरफ खर्च करते हो, उसके लिए ठीक है, वो उसके लिए खसारा नहीं होगा, बाकी सब के लिए खसारा है। इसी तरह औलाद भी खसारे का बायस बन जाती है, इल्ला ये कि उसको अल्लाह के रास्ते में लगाया। दुनिया में ही औलाद के हाथों लोग रोते हैं जब वो अल्लाह के रास्ते में नहीं होते, और आखरत में तो वही औलाद इंसान के लिए कितनी मुश्किल का बायस बन जाएगी। ओके, जब इंसान से पूछा जाएगा भाई आपने क्या तरबियत की इसकी, इसको अल्लाह के बारे में बताया, रसूल के बारे में बताया, दीन पे चलने की तरगीब दी, कुछ भी नहीं, तो ऐसी औलाद कैसे वहां पे फायदा देगी, ना दुनिया में कोई काम आई तो ना आखरत में। तो ये अल्लाह के करीब नहीं करती, कोई ये ना समझे। अब तो पता है नेक औलाद होगी तो उसकी वजह से इंसान के भी आखरत में दर्जे बुलंद हो सकते हैं। नेक औलाद अगर ऊंचे दर्जे पे जाएगी जन्नत में, तो अल्लाह ताला उसके आबा को भी ऊपर के दर्जे में प्रमोट कर दे, उनकी भी प्रमोशन हो जाएगी अपनी औलाद की वजह से। तो अगर अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे फिर तो फायदा ही फायदा है, अगर अल्लाह के रास्ते में नहीं लगी तो फिर नुकसान है। तो जो ईमान ला के साले अमल करें उनके लिए दुगना है। दुगना मतलब क्या, यानी सिर्फ उतना नहीं जितनी नेकी आपने की, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा है। 10 तो अगर इखलास से आपने काम किया तो 10 का तो वादा अल्लाह ने दुनिया में ही किया, इससे आगे बढ़ के 70 गुना, 700 गुना और बेहिसाब का भी वादा है। नीयत पे डिपेंड करता है, हालात पे, कितना इखलास था, कितने किस तरह से आपने दिया। तो ये है कि हर अमल मल्टीप्लाई हो जाता है। अल्लाह ताला एक अमल का एक नहीं सवाब देता बल्कि कई गुना सवाब देता है, जो उन्होंने अमल किए उसकी वजह से अल्लाह उनको ये जजा देगा। और वो गुरफों में होंगे, अमन में, गुरफों में। कैसे गुरफे होंगे? बाला खाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में ऐसे बाला खाने जिनका जाहिर बातिन और बातिन जाहिर से नजर आता है। अब जैसे हम हमारे दुनिया में तो शायद नहीं कोई मिसाल, शायद क्या यकीनन कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, मगर थोड़ा सा इससे शायद एक चीज से सोच सकते हैं हम कि शायद शीशा टाइप की कोई चीज हो कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नजर आ रहा हो। हमारे पास दुनिया में तो और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मतलब जो सी थ्रू हो, ऐसे ऐसा मटेरियल। तो एक अराबी ने कहा ये बाला खाने किसके लिए? आप खुद सोचें, इस दुनिया में भी बाहर बहुत खूबसूरत सीन हो तो लोग कैसी विंडोज रखते हैं। पेंट हाउसेस वगैरह में कई मैंने देखा कि वहां पे उन्होंने इतने खूबसूरत, यानी बिल्डिंग्स में ऊपर बिल्कुल पूरी वॉल ग्लास की सिर्फ, और उससे पूरा शहर नजर आता। जाके तो नहीं देखा, तस्वीरों में ही देखा। तो दुनिया में भी उनकी कीमतें कितनी ज्यादा होती, क्योंकि पूरा एक सीन नजर आ रहा है, और बाहर अगर खूबसूरती है फिर तो और ही हसीन। तो ऐसे बाला खाने होंगे जो ऊंचाई के ऊपर जो होते हैं उनकी जाहिर है वैल्यू ज्यादा होती है। तो अराबी ने पूछा ये किसके लिए है, यानी फिर मैं वो काम करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नर्म कलामी करे, नंबर वन। तो बाज़ दफा हम ना बात करने को कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं समझते, कुछ भी बोल देते हैं, किसी के साथ रूड हो रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली ऐसी बातें कर रहे हैं लोगों के साथ कि दूसरा डर ही जाए। कई लोगों की तो कंपनी ऐसी होती है कि इंसान सहमा ही रहता है, पता नहीं वही कोई को बात ही ना बोल दे, उनकी जुबान उनके कंट्रोल में ही नहीं होती। तो ऐसे लोग फिर सोच लें कि अपनी जुबान के ऊपर नरमी लेकर आए। फरमाया ये नहीं सिर्फ कि अच्छी नरमी, पोलाइट, तुम्हारी जुबानें कैसी हैं, लोग डर डर के रहते हैं या कंफर्टेबल होते हैं, नरम है जुबान हमारी या कैंची की तरह चलती है या तीर चलाती है। तो नरम जो कलाम करे, नंबर टू खाना खिलाए, नंबर थ्री बकसरत रोजे रखे, नंबर फोर लोगों की नींद के वक्त तहज्जुद पढ़े, जब लोग सो रहे हैं तो वो नमाज के लिए खड़ा हो। ये चार खूबियां आपने अंदर लिया है, आपने बाला खाना बाय कर लिया वहां पे। अब यहाँ पे तो पेंट हाउसेस एक वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन वो तो बाला खानों की क्या ही बात होगी। तो ये है कि गुरफात उनमें रहेंगे, उनको वो मिलेंगे आमिनून, अमन के साथ। सोचें अगर दुनिया में मिल भी जाए तो कभी ये खतरा के कुछ लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए, गिर ना जाए, कोई तबाही ना आ जाए, या फिर ये कि कोई हमसे छीन ही ना ले, कोई चोर डाकू ना आ जाए, कोई तोड़ के अंदर ना आ जाए, कोई, या ये कि अमन ये भी कि अंदर भी यानी अमनो अमान रहे, ये ना हो कि झगड़े हों, एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच हो, बदतमीजियां हों, वो भी तो अमन खराब हो गया। लेकिन वो वहां पे अमन के साथ रहेंगे, ना ऐसी कोई बदतमीजियां अंदर, ना कोई झगड़े, ना कोई कीने फसाद, ना बाहर से किसी दुश्मन का खतरा, ना ही किसी के छीन लेने का खतरा, अमन के साथ। ये किन के लिए? जो ईमान ला के साले अमल करें, जो वाकई ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب مال اور اولاد سے نہیں ملتا. یہ کافروں کو ایک بات بتائی جا رہی ہے جو کہ یا جس کے بھی ذہن کے اندر یہ ہو کہ بس یہ میرے پاس ہے تو بس اللہ کے میں تو بڑی قریب ہوں، نہیں، یہ بتایا گیا یہ ہے یا نہیں ہے، کیا چیز تمہیں قریب کرے گی. دیکھیں یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے خود دی ہوئی نا، مال اللہ نے خود دیا اس میں ہمارا کیا کمال ہے، اولاد اللہ نے دی ہے اس میں ہمارا کیا کمال ہے. ہاں جو چیز آپ سے مطلوب ہے، جو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے، آپ ایمان لا کے صالح عمل کریں، وہ پھر آپ کا کوئی کمال ہوئی، کوئی بات ہوئی بنی. جس میں آپ کی کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر آپ کہیں گے جی میں اس کے اوپر بڑی فخر کر رہی ہوں، اس میں آپ نے کیا کیا، کیا کارنامہ ہے آپ کا. کوئی لوگ تو اس سے کچھ فہمی میں رہتے جی ہم نے بڑی محنت کر لی اس لیے ہم نے یہ مال کمایا، یہ امپائر میں نے کھڑی کر دی. یہ غلط ہے، یہ اللہ نے دیا. اسی کو بار بار ری انفورس کیا جا رہا ہے، اگلی آیت میں بھی یہی بات آتی کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق. تو اگر آپ کے پاس مال نہیں بھی ہے تب بھی آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اولاد نہیں بھی ہے تب بھی آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ہیں غبار سے اٹے پڑے، غریب الوطن، بال بکھرے ہوئے، دروازوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں، یعنی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو کچھ ویلیو نہیں دیتا، کوئی ان کو کچھ نہیں سمجھتا. بےچارے اس طرح سے مسکین سے لوگ ہیں، مٹی ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اللہ تعالی پر اعتماد کر کے قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے. یعنی دیکھنے میں بے شک وہ نہیں ایسے لگتے کہ یہ ان کی کوئی پتہ نہیں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے کتنے مقامات ہیں اللہ کے ہاں. تو اچھا ایک بات اور بھی ہے، بعض کرسچن ہیں نا ان کا یہ خیال ہے کہ جس کو اللہ نے مال دے دیا ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، جو غریب ہے وہ اچھا ہے، وہی نیک ہے اور وہی سب ہے اور وہی اللہ کے بڑا قریب ہے. یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. جو ہم نے ذہن میں سوچا ہوا کہ جس کے پاس مال ہے وہ بڑا ہے اللہ کے قریب ہے، اور جو انہوں نے سوچا کہ مال والے کو تو اللہ پوچھتا بھی نہیں اس کو اس لیے مال دیا ہوا ہے، جو غریب ہے یہ نہیں نہیں غربت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مالداری سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اولاد ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا، بے اولاد ہونے سے بھی. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور صالح عمل. تو یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو غریب ہے وہ سارے بس بہت ہی اللہ کے قریب ہیں، یا جو امیر ہے وہ سارے ہی اللہ سے دور ہیں. نہیں، جو بھی ایمان لا کے صالح عمل کر لے گا اسی کے لیے ہے دگنا تگنا، اس سے بھی زیادہ اجر، اسی کے لیے غرفات ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون